ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे हैं और बाबा हम बच्चों को कितना आश लेकर सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। हमें जो कुछ भी समझाने बाबा दे रहे हैं, आज तक संसार में किसी ने भी नहीं दिया। जैसे ही हम बाबा के बने, बाबा ने पहली बात सिखाया, बी होली बी योगी। संसार में होली नाम की चीज को कोई जानता ही नहीं। वर्तमान कलयुग में होली बनना बहुत ही मुश्किल है। चारों ओर विषय विकारों का बोलबाला है। ऐसे समय पर बाबा आकर हम बच्चों को पावन बना रहे हैं। और बाबा किस लिए हमें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो वर्तमान के लिए नहीं या इस दुनिया के लिए नहीं। बाबा तो आए ही हैं नई दुनिया के लिए। हमें ऐसा बना रहे हैं जो हम नई दुनिया के लायक बन जाएं। अभी हम सब कलयुगी विषय विकारों में मस्त थे, पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं और इससे हमको क्या मिल रहा है। क्षणिक सुख को ही हम सुख समझते थे और उस क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते रहे। तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, लेकिन प्राप्ति क्या हुई? अति दुख। और आज चारों ओर का वातावरण, संसार में चारों ओर जो मनुष्य दिखाई देते हैं, वो सारे ही दुख और अशांति से भरपूर हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि हम बहुत सुखी हैं। हमें सब कुछ मिल गया है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत बड़ा व्यापारी हो, बहुत माला माल हो, लेकिन कोई भी नहीं कह सकता कि हमें संसार का संपूर्ण सुख मिल चुका है। बाबा आकर हमें हमारी मांग, संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति दिलाने के लिए आए हैं। और बाबा ने कहा, सुख और शांति का आधार ही है पवित्रता। हम सब इस संसार में पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन जब हम पहले थे उस समय हमने कभी नहीं पुकारा, भगवान आओ और हमें सुख दो, हमें शांति दो। हम तो बहुत सुख की दुनिया में बहुत शांति से, आनंद से अपना राजपाट करते रहे। और आज जब हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, बहुत आलीशान घरों में रहने लगे, बहुत धन संपत्ति कमाने लगे, तब हम कहते हमें सुख चाहिए। तो वास्तव में देखा जाता है, सुख और शांति का जो आधार है वो है पवित्रता, जो हमारे पास पहले थी और आज नहीं है। जितना जितना मनुष्य आज पढ़ लिख कर होशियार होता जा रहा है, उनकी होशियारी सारी ही विषय विकारों में खत्म होता जा रहा है। और जो जितना विषय विकारों में रमा हुआ है, वो उतना ही अपने आप को होशियार समझता है। संसार में ऐसे कितने भी इंस्टीट्यूशन हुए जहां पर करोड़ों की संपत्ति है लेकिन आंतरिक सुख नहीं है। कितने ऐसे संस्थाएं तो आज प्रशासन के पकड़ में आ चुका है, जहां पर धन संपत्ति बहुत है और गलत कर्म हो रहे हैं। तो मानव आज दुख और अशांति से संपूर्ण रूप से घिर चुका है और बाबा हमें उस दुनिया के लायक बना रहे हैं जहां दुख नाम की चीज ही नहीं होगी। न दुख होगा, न डर, न चिंता, न फिकर, भय, कुछ भी नहीं होगा। वहां तो हमें संपूर्ण सुख मिला होगा, संपूर्ण शांति मिली होगी। कभी भी अंदर से ये बात आएगा ही नहीं कि हमें क्या करना है, हमें सुख के लिए क्या करना है। देखो ऐसी दुनिया बाबा बना रहे हैं जहां हम बच्चे जाएंगे और पूरा सतयुग और त्रेता युग तक हम कोई कमाई नहीं करेंगे, लेकिन आनंद से अपना जीवन गुजारेंगे। तो जरूर आनंद से जीवन गुजारने के लिए अभी से हमें कमाई इकट्ठी करनी है, और वो कमाई अभी बाबा करवा रहे हैं। बाबा कहते तुम कमाई करो। कमाई कैसे कैसे? हम योग लगाते हैं वो हमारी कमाई है, हम सेवा करते हैं वो भी हमारी कमाई है, हम जो कुछ बाबा के लिए कर रहे हैं ये सब हमारी कमाई है। तो बाबा हम बच्चों को नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। अब लायक बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम सब बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, परंतु जैसा बाबा चाहता है और जैसा हमें आज मिलना चाहिए समय के अनुसार, क्या वो सारा सब कुछ हमें मिलता जा रहा है? क्या हम ये अनुभव करते हैं कि हाँ जो बाबा चाहता है वो हमको मिल चुका है, या हम अपने पुरुषार्थ से बिल्कुल संतुष्ट हो चुके हैं? ये हमें बहुत गहराई से जांच करना चाहिए, क्योंकि अब समय हमें ये बता रहा है कि अब समय बहुत ज्यादा नहीं है। बाबा धीरे धीरे अपना काम समेट रहा है। बाबा से मिलने हम आते हैं, लेकिन बाबा से मिलन मनाने का तरीका टोटल बदल चुका है। तो ये सब हमें ये बता रहा है कि हम धीरे धीरे लास्ट स्टेज तक पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन हम क्या जैसा बाबा हमें बनाना चाहते हैं वैसा बन चुके हैं? क्या हम अपने आप को सतयुग के लायक समझ सकते हैं? हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा विचार, हमारा व्यवहार आज कैसा है जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं? सबसे पहले बाबा आकर हमको ये बात बताए कि बच्चे तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी सोच क्या है, और कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। हम सोच क्या कर रहे हैं? क्या हम नई दुनिया के लिए सोच रख रहे हैं? और वो सोच है हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ दृष्टि, शुभ वृत्ति, क्या ऐसा अपने अंदर है? हम आज बाबा के बच्चे हैं, बाबा जो कुछ भी ज्ञान सुना रहे हैं, आप सोचो बाबा ने आज जो सुनाया कि बच्चे तुम आत्मा हो और तुम्हें आत्मा समझते हुए मुझ परमात्मा को याद करना है तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अनुभव होता है हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं? अगर हमारे विकर्म विनाश नहीं हो रहे हैं, अगर अभी तक हमारे मन में कुछ भी उल्टा संकल्प चल रहा है, तो इसका मतलब हम बाबा जो सिखा रहे हैं वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। बाबा सिखा रहे हैं तुम सोचो ये, लेकिन हम सोच कुछ और रहे हैं, और वो सोच आज भी वैसा ही है जैसा हम पहले थे। आज हमारे सोच में बिल्कुल परिवर्तन हो जाना चाहिए। हमें सोच अपने न देह में होना चाहिए, न देह की दुनिया में होना चाहिए, न देह के संबंधियों में होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार सब कुछ हमें करना है, लेकिन हमारा जो सोच है, विचार है, वो सिर्फ नई दुनिया की तरफ हो। हमारी बुद्धि में बस ये हो कि अब हमें जाना है, और जाने से पहले हमें सारा संसार को परमात्मा का संदेश देना है, और सारे संसार को ऐसा बना लेना है जो वो परमात्मा को याद करते करते वो भी सुख शांति को प्राप्त करें जैसे हम पा रहे हैं। तो हमारे सोच में ये होना चाहिए न कि आज भी हम कोई मित्र संबंधियों में बुद्धि लगाएं, न कि हम कोई दोस्तों से अपना दोस्ती निभाएं, न कि हम कोई खाने में पीने में घूमने में फिरने में इधर उधर की बातों को सीखने में समय गंवाएं। अब हमारे पास ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, होना वो चाहिए जो नई दुनिया के लिए हो। हमारा पुरुषार्थ वो हो जो बाबा कहते हैं जैसे तुम आए थे वैसे ही तुम्हें जाना है। हम आए कैसे थे? जब हम आए थे तो आत्मा के पास क्या थी? आत्मा अकेली आई थी। इस संसार में आकर उसने इस प्रकृति को धारण किया और इस प्रकृति के द्वारा उसने सब कुछ पाया। तो ना आत्मा को अपना माता पिता चाहिए और ना ही कोई स्थूल चाहिए, लेकिन आत्मा को चाहिए सिर्फ परमात्मा के साथ वो सच्चा संबंध। और जो संबंध को जुड़वाने के लिए बाबा घड़ी घड़ी कहते बच्चे मुझे याद करो। नहीं तो आप सोचो कोई पिता अपने बच्चे को रोज रोज कहे बच्चे मुझे याद करो मुझे याद करो, तो कैसा अटपटा लगेगा ना? लेकिन शिव बाबा हमें कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। क्यों कहते? क्योंकि वो निराकार है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता। हम इन स्थूल आंखों से स्थूल चीजों को देखते हैं, लेकिन वो इन स्थूल आंखों से परे है, उसे हम देखते नहीं हैं। इसीलिए परमात्मा याद नहीं रहता और उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती, बच्चे मुझे याद करो। और अगर हम सिर्फ उसको याद करते हैं तो जरूर हमें वो चीज मिलेगी जो वो दे रहा है, और वो दे रहा है हमें आज इस समय भी संपूर्ण सुख। आज हम देखते हैं कई अपने क्लास में आने वाले विद्यार्थी भी कई बातों में उलझन में बहुत परेशान रहते हैं। क्या करें, घर में ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया। हम कहते हैं ये सब तो है, ये सब जितना आपको करना है उतना करो, लेकिन आप अपनी सोच इनमें दो नहीं। एक के घर में एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गया, अब उसे सोच रहे हैं इनका कैंसर कैसे ठीक हो। हमने उसको कहा देखो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो आप दो, लेकिन आप इसमें इस बात को सोचो नहीं ठीक कैसे हो, कब ठीक हो गया, क्या दवाई चाहिए, ये इसमें आप नहीं जाओ, ये आपका काम नहीं है। आप तो सोचो बाबा को, अगर उसका इस संसार से अभी भी कुछ कर्तव्य रहा हुआ है तो रहेगा, नहीं तो जाएगा। क्यों आप इस सोच विचार में डूबे हो? इस संसार से तो सभी को जाना है। तो देखो हम अपना मन बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं? मालूम है कि ये जो चीज है ये बहुत बड़ी चीज है और इसमें कोई चमत्कार ही इसको जिंदा कर सकता है, नहीं तो ये तो धीरे धीरे उस स्थिति को प्राप्त होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। मैंने कहा ये प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो जीवन में धारण करो। क्यों इतना सोच विचार करके अपने को दुखी कर रहे हो? भगवान तो हमें सुख दे रहा है, तुम सुख लेने की कोशिश करो, दुख न लो। भगवान ने मना किया है कि हमें दुख देना तो नहीं है लेकिन लेना भी नहीं है। ले क्यों रहे हो दुख? सुख लो और सुख दो। उस व्यक्ति को भी बाबा की बातें बताओ, बाबा की सकाश दो, उसके निमित्त जो भी हम कर सकते हैं करें, लेकिन हम अपना सोच विचार इन बातों में ले जा करके अपने पुरुषार्थ को खत्म न करें। और क्या होता है फिर? नहीं वो तो इतना बीमार है, वो चिल्लाता है, वो ऐसा करता है, तो क्लास में सोने लगा, योग भी खत्म होने लगा, अपना पुरुषार्थ सारा खत्म। इससे फायदा क्या हुआ? उसको तो जाना है वो चला जाएगा, लेकिन हम अपना सब कुछ गंवा देंगे। तो हमें जो बाबा ने कहा है, बाबा की उन बातों को अगर हम सामने रखते तो हमें ये दुख की दुनिया में रहते हुए भी, दुख को देखते हुए भी, हमें अपने आप को आगे लेकर जाना है। तब बाबा कहते हैं कि बातें तो आएंगी, अभी तो क्या हुआ है, अभी तो और बातें आएंगी, दुख के पहाड़ गिरेंगे। और ऐसे दुखों के पहाड़ में हम छोटी छोटी बातों में या अपने ही कुछ संकल्प विकल्प में हम अपने को दुखी करें तो हमारा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा और बाबा का हाथ भी छूट जाएगा। तो बाबा ने सबसे पहले हमें सोचने की शिक्षा दी। बच्चे तुम सिर्फ ये सोचो, बाबा ने कभी नहीं कहा तुम ये सोचो ये सोचो ये सोचो। बाबा ने कहा बस सोचो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। बस ये है कनेक्शन। और बाबा ने कहा तुम बाप के बच्चे हो, तुम्हारी तो बाबा के साथ पक्की सगाई हो चुकी है। सगाई किसको कहते हैं, सगाई का अर्थ क्या है जानते हो ना, सगाई का अर्थ क्या है? सगाई माने ही कनेक्शन। हम सब बच्चों का बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ गया है, हमारी सगाई हो चुकी है, हम उसी को याद करते। जैसे सगाई होने के बाद क्या करते, जिससे हुई है उसी को याद करते, तो हम सब उसी को याद करते हैं ना। और बाबा ने कहा अगर बाबा का बनने के बाद तुम मित्र संबंधियों को याद करते हो तो ये तुम्हारी कच्ची सगाई है। कच्ची सगाई माना कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, और कनेक्शन जोड़ा ही नहीं तो प्राप्ति क्या होगी। हमें कुछ प्राप्त करना है तो कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, और जब हम वो कनेक्शन को ठीक से जोड़कर रखेंगे तो हमें मिलेगा। कई बार हम देखते हैं क्लास में कोई भाई बहन आते हैं, एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या द्वेष में भी चले जाते हैं, वो ऐसा करता है वो, और उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। बाबा ने कहा है बच्चे तुम्हें किसी को नहीं देखना है, तुम्हें तो अपने आप को देखना है, तुम्हें खुद नंबर लेकर के आगे जाना है। उसका नंबर ज्यादा है चाहे कम है उससे तुमको कोई लेना देना नहीं, रिजल्ट तो मैं दूंगा ना, जो फाइनल रिजल्ट होगी वो कुछ इन सब बातों से नहीं होगी। फाइनल रिजल्ट तुम्हारी अपनी अपना पुरुषार्थ होगा, तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारा फाइनल नंबर होगा। तुम इन सब बातों में क्यों जाते हो, तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह से बाबा को याद करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। और बाबा की श्रीमत क्या है कि तुम अपना पुरुषार्थ करो, तुम्हें किसी और को नहीं देखना है। एक्स वाई जेड कोई क्या भी करता है लेकिन हमें उन बातों में नहीं जाना है। हाँ अगर कुछ हम देखते हैं कि ये गलत हो रहा है तो बात ऊपर देके हमें खत्म कर देना चाहिए, हमें बुद्धि में उन बातों को नहीं फिराना चाहिए कि हमने बताया तो सही, किसी ने इसका कुछ किया नहीं, इन बातों में हमें नहीं जाना है। हमको बात दे दे करके छुट्टी कर लेना चाहिए, हमें अपने मन को फ्री रखना है किसके लिए कि मुझे शिव बाबा को याद करना है, मेरे पास और कोई बात नहीं हो, बस उनकी ही याद हो निरंतर। अजपा जाप किसको कहते हैं, दुनिया में लोग सोचते हैं अजपा जाप माने वो जाप करना, हाथ में गिनती करना या वो क्या कहते हैं मन के घुमाना, इसको अजपा जाप। बाबा कहते हैं नहीं, नेचुरल रूप में बाबा की याद अंदर समाई हुई हो वो है याद, वो है संपूर्ण याद। और ये याद का तरीका बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। तो बाबा की शिक्षा जो है वो हमें धीरे धीरे नई दुनिया की तरफ ले जा रहा है, इसलिए हमारा मन बुद्धि अब इस दुनिया में यहाँ के लोगों से, यहाँ के पदार्थों से, यहाँ के हर बातों से उपराम होना चाहिए। और ये देखना पड़ेगा कि हम उपराम हुए कि अभी भी कहाँ कहाँ मन बुद्धि जा रही है। कई अपने पास कुछ चीजें इकट्ठे रखते होंगे तो मन बुद्धि घड़ी घड़ी जाती है, वो चीज कैसा है, ठीक है या गलत है, बार बार उसको देखें। अगर वो चीज खराब हो गया या कोई ने उस चीज को उठा लिया निकाल लिया तो भी बुद्धि जाएगी और डिस्टर्ब होंगे। लेकिन बाबा ने इस समय हमें किसी भी बात में डिस्टर्ब होने से मना किया। बाबा ने कहा, बच्चे चुप रहो, शांत रहो और साक्षी होकर सारा खेल देखते रहो। ये सब कुछ होगा और हम सबका हिसाब किताब भी तो है ना, हम सबका हिसाब किताब है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों के साथ है, दुनिया वालों का हिसाब किताब दुनिया वालों के साथ है। इसीलिए अगर हम पक्के ब्राह्मण हैं तो हमें दुनिया के हिसाब किताब से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। हमारा मन, हमारी बुद्धि उन बातों से अलग। हाँ, हम घर में रहते हैं, परिवार के संग रहते हैं, सामने कुछ दिखाई दिया, कर्तव्य मेरा कि ये काम मुझे करना है। तो छोटा बच्चा बोल रहा है ये दे दो, ये कर दो, दे दिया, कर दिया, उसके बाद मन न जाए, ना हमारी याद उनके लिए हो। काम हो गया उसके बाद हमारी बुद्धि बाबा में। इतना हमें अपने आप को हर चीज से डिटैच करना है, नहीं तो हम जैसे आए थे वैसे कैसे जाएंगे। हम किसी चीज को लाए नहीं थे, सब कुछ यहाँ मिला, और यहाँ मिला तो सब कुछ हमें यहाँ ही छोड़ के जाना है। तो जिन जिन से हमारी बुद्धि जुड़ी हुई है, जिन जिन से हमारा संबंध संपर्क जुड़ा हुआ है, उन सबको तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो पहले से क्यों नहीं छोड़ देते? और छोड़ने का मतलब क्या है? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं छोड़ना है। कई लोग क्या करते हैं, अरे हम ज्ञान में चलते, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, रिश्ता तोड़ दिया, जाना आना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, मुंह मोड़ के चल दिए, बाबा ने ये नहीं सिखाया। बाबा ने कहा नहीं, तुम मुझे याद करो, तुम मेरे साथ जोड़ो, अपने आप टूट जाएगा। भाई इनसे जुड़ोगे तो वहां टूटेगा, सही बात है, हिसाब किताब सही है। बाकी ऐसा नहीं उनसे तोड़ने के लिए हम बैठे हैं कि नहीं तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं, अब हम ज्ञानी बन गए, अब हम बाबा के बन गए, तुम्हारा हम ना देखेंगे ना बात करेंगे ना रिश्ता रखेंगे, ये भी चीज नहीं है। हमें तो उनका भी भला करना है, बल्कि उनके लिए भी हमें ये दृष्टि रखनी है कि ये भी बाबा के बच्चे हैं और इन्हें भी हमें बाबा से वो वर्षा दिलाना है। तो जहां तक हम इनका उपकार करें, हम इनका भला करें, ये दृष्टि हमें रखनी है, ये बाबा का बच्चा है, ना कि ये मेरा फलाना है, ये मेरा संबंधी, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो देह भी नहीं है। ये देह मेरा है क्या? ये देह मैं लेके आई हूं क्या? ये देह भी यहीं छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। हम जब जाएंगे हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, आत्मा अकेली आई थी, आत्मा अकेली जाएगी। हाँ कुछ तो वो लेकर जाएगी, क्या लेकर जाएगी? कुछ तो लेकर जाएगी ना, वो जो लेकर जाएगी वो दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां और ये जो ज्ञान आदि जो बाबा दे रहे हैं, ये सूक्ष्म रत्नों को वो लेकर जाएगी। और तब वो नई दुनिया में जाकर के नया पाठ देवी देवता बनकर के बजाएगी। तो हमें नए पाठ के लिए अपने आप को तैयार करना है, हमें इन सब बातों से अपने आप को धीरे धीरे निकालते जाना है। तो हमें छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। हमें करना क्या है? जोड़ो, तोड़ो नहीं, छोड़ो भी नहीं। हम जितना जितना बाबा से अपनी बुद्धि को लगाते जाएंगे, जितना जितना बाबा की श्रीमत पर ध्यान देते जाएंगे, उतना उतना मन उनसे हटता जाएगा। और हमारा मन हटेगा तो उन्हों का हिसाब किताब भी हमारे से क्लियर होता जाएगा, वो भी अपने आप हमको छोड़ते जाएंगे कि अरे इसका मन तो बाबा में रमा हुआ है, जान दो इनको, ये तो साधु बन चुका है। आपको स्वयं ही छोड़ देंगे, आपका बंधन खत्म हो जाएगा। तो हम जो कहते हैं नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, ये तो मेरा अपना सोच है और ये मेरे मन की कमजोरी, मुझे क्या करना है? वो तो बाबा ने बताया ना, तुम्हें अभी ये करना है। अभी बाबा जो होमवर्क दे रहे हैं उस होमवर्क को हमें बिल्कुल पूरा करना है। और ये होमवर्क अगर अभी हम पूरा नहीं कर पाते तो हम आगे क्या करेंगे? इस समय संस्कार देखो लोगों के कैसे हो गए हैं, कलयुगी संस्कार, विषय विकारों वाला संस्कार, और संस्कार ऐसा है दुख देने वाला संस्कार। कई चाहकर दुख देते, कई बिना चाहे भी दुख देते हैं। संस्कार बन चुका है। जैसे कल की घटना मैं बताऊं, हम सौगात देने में लगे थे, चप्पलों को बाहर किसी ने कर दिया, भाई लोग आए, चप्पल रखा था अंदर ही पर उसको बाहर कर दिया। बाहर कर दिया तो बाहर रहना चाहिए था, लेकिन वो चप्पलें नहीं मिली और हम सभी बहनों के चप्पल चले गए। मतलब बाबा के घर में आकर के हमने लिया ना, किसी ने तो लिया, नहीं तो हमें मिलना चाहिए था ना। तो ये संस्कार हमारा क्यों, आज भगवान के घर में आकर हम ये कौन सा कर्तव्य कर रहे हैं, चाह कर नहीं किया, संस्कार बन चुका है। अरे पड़ी है ना, मेरा नहीं मिल रहा है, चलो इसी को पहन के चले जाओ। पर मैं नहीं गई, मैं तो बिना चप्पल के ही अपने रूम में गई, मैं नहीं गई। तो ये संस्कार कैसा, क्या ये सतयुगी संस्कार है? सतयुग में ऐसा करेंगे? और हम देवी देवता बनने वाले, कितना ऊंचा पद बाबा दिला रहे हैं, बाबा हमें कितना ऊंचा बना रहे हैं, और हम, हमारी दृष्टि चप्पल में, तो हम क्या बनेंगे, भविष्य हमारा क्या? तो हम स्वयं जांच करें कि ये क्या है, आज बाबा के घर में बाबा के बच्चे ऐसा कैसे कर लेते हैं। माना ये एक साधारण आम हो चुका है, आम माना कोई जानबूझ के किसी को सताने के लिए नहीं, लेकिन हो रहा है, हो रहा है। उसने उसका पहन लिया, उसने उसका पहन लिया, उसने उसका, बस वो कहां से कहां चला गया कुछ पता ही नहीं। तो हमारे वर्तमान समय के संस्कार कितना ऊंचा होना चाहिए। आज हम बाबा के घर में आते, यहां से कोई भी चीज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि तो उपराम है ना, हमारी बुद्धि कोई चप्पलों में थोड़ी है। इसीलिए हमें इन सब बातों को बहुत गहराई से जांच करना चाहिए कि बाबा के श्रीमत अनुसार, और जैसा बाबा हमें संपूर्ण दैवी गुणों से संपन्न मानव बनाना चाह रहे, क्या वो सारे गुण हमारे में आ चुके? ये छोटे छोटे संस्कार, ये संस्कार हमें कहां ले जाएगा? और पता है बाबा ने कहा है, संस्कार को बहुत इजी बनाओ, सरल बनाओ, जैसे छोटा बच्चा होता है, कोई बात आई, बच्चे ने जिद पकड़ी, उसको एक दो चांटा भी लगा दिया उसके मम्मी ने पापा ने, बच्चा रोया धोया, थोड़ी देर में आप देखो बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल वैसे ही हंस रहा है, खेल रहा है। हम सब क्या करते हैं, कोई बात आई उसको गांठ बांध लेते हैं, ये हमारा दैवी संस्कार नहीं है। बात आई वो तो चली गई, लेकिन हम उसको जो गांठ बांध कर रखे, उसमें हमारा मन खराब हुआ, मन के साथ तन खराब हुआ, और जब मन और तन खराब हुआ तो हमारे कर्म खराब हुए। ठीक है, मन खराब हो गया, तन में चिड़चिड़ापन आया, बीमारी सी कोई झलक आई, मूड ऑफ हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारे कर्म कैसे होंगे? कुछ भी बात आएगी जाएगी, हम बोलेंगे कैसे, हम करेंगे कैसे, उसकी एक्टिविटी कैसी होगी? तो ये बात बाबा ने हमें नहीं सिखाया। बाबा हमें सिखा रहे हैं, तुम तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने जा रहे हो। क्या श्री लक्ष्मी श्री नारायण ऐसे करेंगे? और हमें हर बात में अपने आप को चेक करना है। देखो ये जो समय चल रहा है, ये समय लास्ट है, एकदम लास्ट का समय चल रहा है, अब हमें चेकिंग करके चेंज कर लेना चाहिए। अगर आज भी हम नहीं करते हैं तो ये संस्कार हमारा रह जाएगा, हम उस दुनिया के लायक नहीं बन पाएंगे। बाबा ने कहा है, जाओगे तो जरूर लेकिन सजा खाओगे और पद भ्रष्ट होगा। तो बाबा के बच्चे पद भ्रष्ट होकर जाए, ये बाबा को भी पसंद नहीं और हमें भी पसंद नहीं। तो इसीलिए अपना संस्कार बहुत इजी हो। कहा जाता है अगर टाइट संस्कार है तो टाइट संस्कार जो है ना वो सर्कमस्टांस भी टाइट कर देता है। हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी आएंगी क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं। मैंने देखा है क्लास में कई लोग आते हैं, लेकिन कई लोग आने के समय सवेरे सवेरे मुरली के समय मुरली पर इतना ध्यान नहीं दिए। हैं अच्छे बाबा के बच्चे, जब उनको बोलो बहुत भावना से वो आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन वो ज्यों की त्यों हो जाएं, क्या करें। बच्चों ने कहा आज नाश्ता बोला कि आज फलाने ढोसे बना के खिलाओ, तो मैं बैठ गई। तो ऐसे ऐसे क्लास मिस करना। मैंने कहा देखो अगर आप इसमें लगे रहोगे आप क्लास कब करोगे, तो बोले मैं आके मुरली पढ़ लूंगी। मैंने कहा देखो गोप गोपियां मुरली सुनने जाया करती थी, पढ़ती नहीं थी, मुरली पढ़ने की चीज नहीं है। हाँ पढ़ना माना बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, वो उसको रिवाइज करने के लिए वो पढ़ाई अलग है, लेकिन सुनना जरूरी है। भगवान का महावाक्य हमारे कानों में जाए, पढ़ लेंगे तो जितनी देर तक हमारी आंखें उस पर है उतनी देर तक है, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन जब सुनोगे तो अंदर जाएगा, और सुनोगे तो ही धारणा होगी, पढ़ने से धारणा नहीं होगी। पढ़ने वाले रट लेते हैं पास हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर लेने वाले होते हैं वो उसको आजीवन तक रखते हैं अपने पास। तो इसीलिए मुरली सुना, और धीरे धीरे आप देखो जैसे उसने अपना संस्कार बना लिया ना, टाइट संस्कार कि नहीं मुझे तो ये करना है, बच्चों ने कहा, वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा है, मैं नाराज करना नहीं चाहती हूँ, काहे को नाराज करना, घर वाले भी खुश रहे, ज्ञान में भी चलूं घर वाले भी खुश रहे। मैंने कहा श्रीमत का उल्लंघन है, और आपके लिए कोई टाइम तो चेंज नहीं होगा कि इस समय नहीं, स्कूल का टाइम तो वही रहेगा, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई आपकी तो ये भी उल्लंघन है। खैर सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, हाँ बोला बहुत, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कोशिश करूंगी देखूंगी आदि आदि। लेकिन आज आज भी वो उनके बच्चे बड़े हो गए, नौकरी चाकरी भी कर रहे हैं, लेकिन उनका रेगुलर क्लास नहीं है। कोई ना कोई परिस्थिति है, कोई ना कोई तबीयत खराब है, आज उठी नहीं सकी सुबह, आज नल नहीं आया था, आज वो पता नहीं कौन दूध वाला आ गया या सुबह सुबह चिल्लाने लगा, कुछ भी उसके पास ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं जो वो रेगुलर क्लास में नहीं है। कोई दिन आते हैं कोई दिन नहीं आते हैं, रिटायर भी हो गए, बहन रिटायर भी हो गई, लेकिन फिर भी ज्यों का त्यों। तो इसलिए जैसा हम अपना संस्कार बनाते हैं उस अनुसार हमारे सामने परिस्थितियां बनती जाती है। तो हम क्यों बनाए ऐसा संस्कार? संस्कार तो जो बाबा बना रहे हैं वो संस्कार बनाए ना। बाबा ने हमें कहा सुबह उठना है, सुबह क्लास करना है, तो सुबह आना ही आना है कि नहीं आना है, कि हम अपने ही परिस्थितियों को सामने रखते हुए छोड़ देना है बाबा की बातों को। बाबा इतना इजी बता रहे हैं, बाबा ने कोई सारा दिन बैठने के लिए नहीं कहा है, लेकिन बाबा ने जो कहा है सिर्फ सिर्फ उसी पर हम ध्यान दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए और हमें वो सारी चीज मिलने लगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है लेकिन सिर्फ ध्यान देना है। तो इसीलिए, और जब ऐसा हो जाता है टाइट संस्कार टाइट सर्कमस्टांसेस, तो परिवार के सगे संबंधी भी उसके साथ टाइट व्यवहार करते, नहीं यही चाहिए, नहीं तो कहते नहीं नहीं आप तो जाओ क्लास करो हम लोग कर लेते हैं, उसके साथ उतना ही टाइट होंगे क्योंकि उसने टाइट बना लिया अपने आप को, जो बाबा कहते हैं उस हिसाब से अपने को ठीक नहीं रखा। तो देखो हम बाबा के बच्चे अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक भी हमारे पास वही बातें हैं, वही दुख है, वही दर्द है, वही परिस्थितियां हैं, वही विघ्न है, वही समस्याएं हैं। होना क्या चाहिए, ये सब कुछ एक तरफ है, लेकिन हम बड़े खुशी में बड़े मौज में बड़े आनंद से चल रहे हैं। हाँ वो ठीक है, वो अपने रास्ते हैं, हम अपने रास्ते हैं, हमारे अंदर उसका प्रभाव नहीं, हमारे ऊपर उसका कोई क्या कहेंगे दुख नहीं कि ये घटना ऐसे घट गई, घटी होगी, 5,000 साल पहले भी घटी थी, आज भी हुई है। उसको ज्यादा चिंतन मनन करते ही नहीं, तो जैसे कि न्यारे हैं। और दुनिया से हमें न्यारा तो होना ही है, अगर हम नहीं होते हैं तो परिस्थिति हमको न्यारा बनाएगा और तब मजबूरी से हमको होना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार तो खाली होना है और सबको जाना है। जिन जिन को हम पकड़ कर रख रहे हैं ये सब कोई हमारे साथ नहीं जाएंगे, हमें तो अपने आप अकेले जाना है। इसीलिए हमें अपने पुरुषार्थ पर संपूर्ण ध्यान देना है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं, बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम बाबा के बच्चे बनकर कितना श्रेष्ठ कर्म किए, कितना पुण्य की कमाई की। अभी देखो, जैसे प्रतिदिन सुबह कहा जाता है गुलजार दादी के निमित्त 10 मिनट योग करके जाओ, पर कई लोग उठ जाते हैं, उठ के कहां जाते, कोई विशेष काम नहीं, 10 मिनट में उनका कोई काम नहीं रुकने वाला, लेकिन जो उठकर जाते हैं वो कहां जाते हैं, डाइनिंग टेबल में। क्या हम 10 मिनट बाद डाइनिंग टेबल में नहीं पहुंच सकते? और ये जो काम दिया गया है उन्हें सकाश देना, हमारी खुद की उन्नति और उनको हमने दिया तो हमने पुण्य की कमाई की ना, तो हम ये पुण्य कर्म क्यों छोड़े, करना चाहिए, हर एक को ये काम तो करना ही चाहिए। आज हमें अगर पुण्य की कमाई के लिए ये बोला जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो हमें ये आदेश पालन करना जरूरी है। वो गुलजार दादी जिसने आज तक भगवान से हमारा मिलन करवाया, इस यज्ञ के श्रेष्ठ, इस यज्ञ के सबसे प्रमुख आत्मा, जिनके आधार से हम सब मिलन मना रहे हैं, आज उनके लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। हमें अपना ही खाना पीना, अपना ही कारोबार समझ में आता है, छोड़ सकते हैं ना 10 मिनट के लिए, क्या हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि 10 मिनट में कुछ आफत हो जाएगी, लेकिन हम नहीं करते, ये भी हमारा संस्कार बना हुआ है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम पुण्य की कमाई नहीं करें, लेकिन ये हमारा संस्कार पहले से बना हुआ है कि नहीं, हमको बस मुरली पूरी हुई, हमको उठ जाना है, करना नहीं, कुछ नहीं करना है। अगर कहते हैं कि आधा घंटा और योग करो, आधा घंटा और योग करें तो हमारी खुद की उन्नति है, हम अपनी कमाई करते हैं, आधा घंटा हम कमाई कर लें, नहीं उठ जाएंगे। तो ये सब जो बातें हैं उससे हम समझ सकते हैं अभी तक हमारा मन, हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, क्या हम उपराम हुए हैं। हम बाबा के बच्चे और बाबा हमारे द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, हमारे सिवाय दूसरा कोई नहीं होगा, हमारे ही द्वारा नई दुनिया का गेट खुलेगा और बाबा वो सर्कमस्टांस पैदा कर देगा कि जिससे हमारी सब बातें अलग हो जाए, हमें एक झटके में बाबा खड़ा कर देगा, बाबा खड़ा कर देगा। बाबा को अपना काम करना है, लेकिन हमारा भाग्य, क्या हम वो पद को पा सकेंगे? बाबा तो खड़ा कर देगा कि हाँ बस तुम संपूर्ण बन गए, हो गया, इस दुनिया का खेल खत्म हो गया, अब ये सब गए, तुम हो। लेकिन क्या हम उस भाग्य को प्राप्त कर पाएंगे, क्या हम वो ऊंचा पद पा सकेंगे? और ये सब कुछ अचानक होगा, कोई बोलकर नहीं होगा कि हाँ अब समय ऐसा हो गया, परिस्थिति ऐसी हो गई, अब धीरे धीरे सब अलग हो गए, नहीं, नई दुनिया आ गई, अचानक होगा, भीषण घटनाएं घटेंगी, लेकिन उसके लिए हम अपने मन को भी नहीं तैयार किए। भीषण घटनाएं भले घटे, लेकिन हमारा मन उन घटनाओं को सोच सोच कर दुखी न हो, परेशान न हो, लेकिन हमारा मन उस समय क्या करे, जो उस घटना में दुख झेल रहे हैं उन्हें विशेष सकाश देना। हमें याद आए कि वो आत्माएं जो इन बातों में फंस चुकी हैं, उन आत्माओं को विशेष सकाश मिले, उन्हें विशेष शांति मिले, उन्हें शक्ति मिले, हमारी भावनाएं, हमारा संकल्प उनके लिए हो, न कि हम ये सोचे कि हाय मेरा वो जो था ना वो भी तो वही था, कहीं उसका तो कुछ नहीं हो गया। और बाबा हमारी एक एक बात सुनता है। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, मैं क्लास कराने गई थी कहां पर, तो वो हमको सुना रही थी कि सवेरे सवेरे लड़ाई हो गई, सवेरे सवेरे बिल्कुल सवेरे लड़ाई होगी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, एक व्यक्ति को मारते जा रहे थे और कहा आज इस व्यक्ति को खत्म कर देंगे, इसका मर्डर होना चाहिए, इसको मर्डर कर दें आज। तो बोले मेरे कानों में बार बार आ रहे इसका मर्डर हो जाए, मर्डर हो जाए, आज इसको खत्म कर दे। तो बोले मैं अपने घर से निकल के सोची मैं चली जाऊं उधर, तो मैं थोड़ा दौड़ लगाई और एक व्यक्ति मेरे पीछे फर्श बहुत बड़ा एक फर्सी उठाकर आ रहा था कि इसको आज मार डालेंगे। तो मैं सोची कि मेरे ऊपर तो नहीं गिरा देगा ये, तो मैं थोड़ा सा दौड़ी और दौड़ते से ही मुझे याद आया मैं क्यों दौड़ रही हूं, मैं अपने लिए सोचूं उस व्यक्ति को तो बचा लूं जिसको मारने के लिए जा रहे हैं लोग, मैं उसको बचाऊं। उसने तुरंत कहा शिव बाबा इसका मर्डर नहीं हो, इस व्यक्ति को बचा लो। और क्या हुआ, तुरंत एक सेकंड में घटना चेंज हो गई, आरएसएस के बहुत बड़ा लाइन आ रहा था, उसने देखा मुठभेड़ हो रही है, सब आकर के पकड़ करके सबको अलग कर दिया और उस व्यक्ति को बचा के अलग कर दिया। तो देखो बाबा कैसे सुनता है, हमारा एक संकल्प उस व्यक्ति को जीवन देने वाली बन गई ना। तो मैं ऐसे ऐसे पुण्य की कमाई क्यों ना करूं कि मैं अपना सोचूं कि मुझे तो चोट नहीं लगेगी, मैं तो बच जाऊं, नहीं मैं अपनी बचाव की न सोचूं, मैं सबके लिए सोचूं। क्या ऐसा मेरा मनोभाव उस समय होगा, क्या इतना मैं अपने आप को उपराम कर चुकी हूं कि मेरा न मन मेरे देह में, न देहधारियों में, न देह के संबंधियों में। तो मैं अपने इस पुरुषार्थ की गति को अंतिम पुरुषार्थ कैसे समझूं, अगर मैं ऐसा नहीं करी हूं तो मुझे कितना अपने आप को एक्यूरेट बनाना है, कितना अपने आप को इन सब बातों से उपराम करना है, तब तो मैं उस चीज को प्राप्त कर सकूंगी ना। नहीं तो हमारे साथ ये जो घटनाएं घट रही हैं ये तो घटेंगी, लेकिन बाबा इन सबको एक समय शांत कर देगा। बाबा का काम धीरे धीरे चल रहा है और बाबा के वो बच्चे बाबा के कार्य को समझ भी पाएंगे, लेकिन वो बच्चे जो बाबा की श्रीमत को नहीं सुन रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, पुरुषार्थ पर अटेंशन नहीं है, संकल्प विकल्प करते जा रहे हैं, वो बाबा के इन बातों को कैच भी नहीं कर पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। और समय पूरा हो जाएगा, जब पूरा हो जाएगा तब कहेंगे ये क्या हुआ, मैं कहां, और बाबा ने तो कहा है कि लास्ट में सबको दिखाई देगा कौन क्या बनेगा, और उस समय हमारा रिजल्ट खुल जाएगा। तो हमें इस अंतिम समय पर अपना पुरुषार्थ बहुत तीव्र करना चाहिए और बाबा के अनुसार अपने आप को चलाना चाहिए, मन बुद्धि को उपराम करना, ये हमारा इस समय का प्रमुख कर्तव्य। और मन बुद्धि को उपराम करने का एक ही तरीका है कि मैं बस बाबा को याद करूं, बस। ऐसा नहीं है कि उसको तोड़ना है, लेकिन जोड़ना है, मन को बाबा के साथ जोड़ करके रखें, मन में दूसरी बातें नहीं हो। ओम शांति।
साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन, साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। है सजी हमारी दुनिया जब रंग दिया जीवन, ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से टूट गए बंधन, उड़ते हम आतम पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन, साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। आज दिवस मंगल आया उजली मिली है राहें, बदला है संसार है बदली, बदली हुई निगाहें। टूट गए बंधन उड़ते हम आतम पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन, साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन।